साकेत अपनी अम्मी को बार बार इशारे से चुप रहने को कह रहा था, लेकिन नूर की खाला जैसे आज ठान कर आई थी। उनके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी और आवाज में चुभन साफ छलक रही थी। तुम मुझे चुप क्यों कर रहे हो साकेत? उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। मैं कोई गलत बात थोड़ी कर रही हूं। देखो, नूर पढ़ने गई थी, ठीक है, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब वापस आ गई है तो क्या करेगी? घर में ही रहेगी ना, झाड़ू पोछाई तो करेगी, तो फिर उसके बारे में बात करना गलत कैसे हो गया? कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। सुल्ताना बेगम ने घबराकर अपनी बहन की तरफ देखा, जैसे उन्हें रोकना चाहती हूं, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। तभी नूर चाय की ट्रे लेकर अंदर आई। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों के कोनों में हल्की थकान और दबा हुआ दर्द साफ दिख रहा था। उसने सबके सामने ट्रे रखी ही थी कि उसी वक्त दरवाजे से उसके अब्बा इकबाल अंदर आए। उन्होंने एक नज़र पूरे माहौल पर डाली और फिर बिना कुछ कहे नूर के हाथ से ट्रे अपने हाथों में ले ली। उनकी आंखों ने नूर को इशारा किया, मैं हूं, घबराओ मत। नूर ने हल्का सा सिर झुका लिया, जैसे उसे अपने अब्बा की मौजूदगी से हिम्मत मिल गई हो। इकबाल ने धीरे से ट्रे मेज पर रखी और फिर सख्त आवाज में बोले, इसने शहर छोड़ा है, पढ़ाई नहीं छोड़ी। उनके हर शब्द में एक ठहराव और गर्व था। नूर की खाला ने होंठ भींचे, लेकिन फिर भी रुकने वाली कहाँ थी। मैं तो बस इस रिश्ते की बात फिर से करना चाहती थी, उन्होंने कहा। नूर मेरी बहन की बेटी है और मेरा बेटा साकेत, वो तो बचपन से इसी के साथ निकाह करना चाहता है, इसमें बुरा क्या है? साकेत ने उम्मीद भरी नजरों से इकबाल की तरफ देखा। उसके दिल में जैसे एक छोटी सी रोशनी जल उठी थी, शायद आज बात बन जाए। लेकिन अगले ही पल वो रोशनी बुझ गई। मेरा जवाब आज भी वही है, इकबाल ने साफ और ठंडे लहजे में कहा। अभी इसकी शादी नहीं होगी, इसे पढ़ना है। उनके शब्द पत्थर की तरह गिरे। साकेत की आंखों में जो उम्मीद चमक रही थी वो धीरे धीरे बुझती चली गई। उसने नजरें झुका ली। नूर चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर जैसे तूफान उठ रहा था। उसे अपने अब्बा पर गर्व था, लेकिन हालात की सख्ती उसे अंदर से तोड़ भी रही थी। और एक बात, इकबाल की आवाज इस बार और भी सख्त हो गई। नूर मेरी बेटी है, आपको कोई हक नहीं है इसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने का या इसके फैसलों पर सवाल उठाने का, समझ रही हैं आप? कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। सुल्ताना बेगम ने तुरंत बीच में आकर बात संभालने की कोशिश की। आप ये क्या बोल रहे हैं, हम तो अपने ही हैं। लेकिन इस बार इकबाल ने अपनी बीवी की बात को भी अनसुना कर दिया। उन्होंने सीधा अपनी साली की तरफ देखा। अब आपको मेरी बेटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये शब्द सिर्फ एक जवाब नहीं थे, ये एक दीवार थे जो उन्होंने अपनी बेटी और दुनिया के बीच खड़ी कर दी थी। खामोशी फिर से पूरे कमरे में फैल गई। साकेत के हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसका दिल जैसे टूटकर बिखर चुका था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके पास नहीं थे। दूसरी तरफ खाला के चेहरे पर नाराजगी साफ छलक रही थी। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उनकी बात इस तरह ठुकरा दी गई। और बीच में खड़ी सुल्ताना बेगम, वो अपनी बहन और अपने शौहर के बीच फंस गई थी, ना बोल पा रही थी ना चुप रह पा रही थी। उस दिन उस घर में सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटा था, बल्कि कई दिलों के बीच खामोश दूरियां पैदा हो गई थीं। नूर अपने अब्बा की बात सुनकर जैसे अंदर से खिल उठी थी। उसके चेहरे की बुझी हुई रोशनी फिर से लौट आई, आंखों में सुकून उतर आया था। इकबाल ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उस नजर में सख्ती नहीं, सिर्फ एक बाप का बेइंतहा प्यार था। वो धीरे से उसके करीब आए और नरमी से बोले, मैं हूं ना तुम्हारे साथ हर हाल में। ये सुनते ही नूर की आंखें हल्की सी नम हो गई, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं सुकून के थे। इकबाल के दिल में एक ठान चुकी थी, वो अपनी बेटी के लिए ऐसा ही लड़का ढूंढेगा जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहे, ऐसा नहीं जो अरमान की तरह आधे रास्ते में ही साथ छोड़ दे। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे पुराने जख्म याद आ गए हों। प्यार करना आसान होता है, मगर निभाना बहुत मुश्किल। नूर ने अपने अब्बा की तरफ देखा। उसे लगा जैसे उन्होंने उसके दिल की वो बात कह दी हो जो वो खुद कभी जुबान पर नहीं ला पाई। दूसरी तरफ अरमान, जो अभी अभी दिल्ली से लौटा था, सीधे रेहान के ऑफिस गया था। वहां से लौटते वक्त उसके चेहरे पर अजीब सी उलझन थी, जैसे कोई सच्चाई उसे अंदर से तोड़ रही हो। घर के दरवाजे पर कदम रखते ही माहिरा ने उसे देखा और तुरंत पूछा, भाई मॉम को साथ क्यों नहीं लेकर आए? वो आपके बाद आई हैं और आते ही अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया है। माहिरा की बात सुनकर अरमान ने एक ठंडी सांस भरी। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। कितना अच्छा होता अगर मॉम अपनी जुबान को ही बंद रखें, उसने हल्के गुस्से में कहा। इतना बोलती हैं कि कमरे में खुद को बंद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। उसकी आवाज में चिढ़ भी थी और कहीं ना कहीं बेचैनी भी। असल में रिहान से मुलाकात के दौरान जो कुछ उसने सुना था उसने उसके दिमाग में नूर की एक आरा की तस्वीर बना दी थी। रिहान ने उसे यकीन दिला दिया था कि नूर कैरेक्टरलेस है, कि वो किसी के साथ भी खेल सकती है, और अरमान ने उस वक्त बिना सोचे समझे उसकी बातों पर भरोसा कर लिया था। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था कुछ बातें खुद ब खुद सामने आने लगी थीं। कुछ यादें, कुछ लम्हे, नूर की वो सच्ची आंखें, उसका खामोश प्यार, सब कुछ मिलकर अरमान के दिल में सवाल खड़े करने लगे थे। क्या वो सच में वैसी थी जैसा रिहान ने बताया, या फिर उसने किसी की बातों में आकर एक सच्चे रिश्ते को खुद ही तोड़ दिया। अरमान सोफे पर बैठ गया, हाथों से अपना सिर थाम लिया। उसके अंदर जैसे जंग चल रही थी सच्चाई और झूठ के बीच। उधर कमरे में बंद उसकी माँ और इधर उसके दिल में बंद होती जा रही सच्चाई, और इन सब के बीच नूर, जो अब उससे बहुत दूर जा चुकी थी। शायद अब पछताने का वक्त शुरू हो चुका था। पता है क्या हुआ? अरमान की आवाज में गुस्सा उबल रहा था। रेहान ने मेरी गाड़ी की झूठी लोकेशन निकलवाई है और कह रहा है कि मैं और नूर रात भर गेस्ट हाउस में थे। माहिरा ने भौहें से कोड़ते हुए उसे देखा। अच्छा, दिखाओ मुझे, क्या रिपोर्ट भेजी है उन्होंने? अरमान ने झुंझलाकर फोन मेज पर पटका। रिपोर्ट जो मर्जी हो, मैं तो कभी उस गेस्ट हाउस गया ही नहीं। जब मैं गया ही नहीं तो मेरी गाड़ी कैसे पहुंच गई वहां? उसकी आवाज में बेबसी साफ थी। गुस्से में वो कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। माहिरा वहीं खड़ी रह गई। उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वो धीरे धीरे अपने कमरे में गई, लैपटॉप खोला और सीधे गेस्ट हाउस के सीसीटीवी फुटेज निकालने लगी। उसी दिन की उसी रात की, जिस दिन की लोकेशन रिहान ने दिखाई थी। स्क्रीन पर धुंधली सी वीडियो चलने लगी। रात का सन्नाटा, गेस्ट हाउस का गेट और फिर एक कार आकर रुकती है। माहिरा की सांस अटक गई। ये तो हमारे घर की गाड़ी है। वो स्क्रीन के और करीब झुक गई। दिल तेजी से धड़क रहा था। कार का दरवाजा खुला और अगला ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये अरमान नहीं है। गाड़ी से फैजान उतरा था और वो भी अकेला। अचानक उसके दिमाग में एक याद कौन थी। ये वही दिन है जब फैजान को गाड़ी मैंने दी थी। उसने वीडियो को पीछे करके फिर देखा, फिर आगे, हर एंगल से, हर सेकंड। लेकिन सच साफ था। उस रात गेस्ट हाउस में अरमान नहीं था, नूर भी नहीं थी, सिर्फ फैजान था। माहिरा एक झटके से खड़ी हो गई। अब उसके सामने एक बड़ा सच था, एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल सकता था। अगर वो ये बात अरमान को बता दे तो रिहान का झूठ उसी पल बेनकाब हो जाएगा, नूर पर लगा इल्जाम मिट जाएगा और शायद अरमान और नूर फिर से एक हो जाए। नहीं, माहिरा की आंखों में अचानक सख्ती आ गई। उसने सिर हिलाया जैसे खुद को रोक रही हो। अगर अरमान को पता चल गया कि नूर वहां थी ही नहीं तो उनकी कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। उसकी आवाज अब धीमी थी मगर इरादा मजबूत।
मैं नहीं चाहती कि वो लड़की फिर से मेरे भाई की जिंदगी में आए। उसके चेहरे पर हल्की नफरत उभर आई।